We greet each and every one of you seated before your television waiting for this program. Just as you are excited, we are also excited.
TV के सामने बैठे हुए सभी दर्शकों को हम अभिवादन करते हैं. जिस तरह से आप इस प्रोग्राम के बारे में बहुत ही उत्साहित हैं, हम भी उत्साहित हैं.
We thank God once again for this opportunity to come into your homes to join with you in the fellowship of this Holy Land program.
और निश्चित परमेश्वर का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि हम इस संगति में आए हैं कि आपके साथ में Holy Land program में एक बार फिर से मुलाकात कर सके.
We all know and believe that Jesus Christ came to the world 2000 years ago.
हम सब जानते हैं और ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में लगभग 2000 साल पहले आया.
I'm sure the next point you all would have guessed correctly for how many years he was 33 and a half years.
और निश्चित ही मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे होंगे उसकी उम्र कितनी थी उस समय. 33.5 साल की उम्र थी.
He was crucified for our sins.
और वो तो हमारे ही पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया.
And on the third day, he was resurrected and is living eternally.
और तीसरे दिन वो फिर से मुर्दों में से जी उठा और वो तो अनंत काल के लिए जीवित है.
We say that the Messiah's first coming to the world has taken place already.
और हम इस तरह से कहते हैं कि मसीहा का इस संसार में पहली बार जो आना है वो तो पहले ही हो चुका है.
His birth, his ministry was foretold many hundreds of years ago.
उसके जन्म के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में कई सैकड़ों साल पहले ही बताया गया था.
This was prophesied by 5 great prophets.
और इसके बारे में 5 महान भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी.
One is Isaiah.
उनमें से एक है यशायाह.
2 Jeremiah.
दूसरा है यिर्मयाह.
3 Ezekiel.
और तीसरा है यहजकेल.
4 Amos and of course 5 Micah.
और निश्चय ही चौथा है आमोस और पांचवा है मीका जिसने भविष्यवाणी की.
लास्ट वीक वी डिस्कस्ड इन डिटेल द वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट.
पिछले हफ्ते हमने यीशु मसीह के कुवारी के द्वारा जन्म के बारे में विवरण से देखा है.
And about his ministry we prophesied was by the great prophet Isaiah.
और उसकी सेवकाई के बारे में महान भविष्यवक्ता यशायाह ने पहले से ही भविष्यवाणी करके रखी थी.
When we say Isaiah, I'm sure you all be very thorough about the life of Isaiah.
और जबकि मैं यशायाह कहती हूँ तो मैं इस बात को जानती हूँ कि आप सब लोग यशायाह के जीवन के बारे में पूरी तरह से जानते हैं.
Isaiah lived 700 years before the birth of Jesus Christ.
यशायाह यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहले जीवित था.
This week we will shift our study to the prophet Zechariah.
और इस हफ्ते हम अपने अध्ययन में जकरिया भविष्यवक्ता के बारे में देखते चले जाएंगे.
And you can guess, of course, that Zechariah lived after Isaiah.
और निश्चय आप अनुमान लगा सकते हैं जकरिया तो यशायाह के बाद में जीवित था.
Prophet Zechariah foretold 5 important prophecies.
और जकरिया भविष्यवक्ता ने 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के बारे में कहा था.
Please take note, you should be well versed with these 5 prophecies of Zechariah.
और निश्चय जकरिया की इन 5 भविष्यवाणियों के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे.
Firstly, he was foretold about the entry of Jesus Christ into Jerusalem on a donkey.
और निश्चय सबसे पहले उसने ये बताया था कि यीशु मसीह एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा. उसने इस बात की भविष्यवाणी की थी.
And then secondly, about the betrayal of Jesus Christ for 30 pieces of silver.
और दूसरी बात उसने कहा था कि चांदी के 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा. इसकी भविष्यवाणी की थी.
And thirdly, his death was about a stricken shepherd.
और निश्चय ही उसने उसकी मृत्यु के बारे में भी इस तरह से भविष्यवाणी करके रखी थी.
And the fourth prophecy was that Jesus Christ is coming again on Mount Olives.
और चौथी भविष्यवाणी उसने ये भी की कि यही यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर फिर से वापस आएगा.
Finally, millennial reign of Jesus Christ as the high priest and the king.
और फिर अंत में महायाजक और राजा के रूप में यीशु मसीह का जो 1000 का राज्य करने का समय है उसने उसे बताया था.
Of course, you all would know this point very well, I'm sure.
और मैं निश्चित जानती हूँ कि आप इस बात को पूरी तरह से जानते हैं.
The book of Genesis, Psalms and Isaiah are the most quoted books in the New Testament and the most popular, of course.
उत्पत्ति की किताब, भजन संहिता और यशायाह की किताब, ये तो नए नियम में ऐसी किताबें हैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा बताया गया है. इसके बारे में हम जानते हैं.
If we consider the length and the importance of the content,
और हम निश्चय ही अगर संदर्भ की लंबाई को और इसके अंदर जो सार है उस बात को अगर देखते चले जाएं,
we will not be surprised.
तो फिर हम चकित नहीं होंगे.
Most of us, of course, would be amazed to learn that even though Prophet Zechariah wrote only about 14 chapters in his book,
हम में से बहुत से लोग इस बात से चकित होंगे कि ज़करिया भविष्यवक्ता ने केवल 14 अध्याय ही लिखे हैं.
There are about 40 quotes from the book in the New Testament.
लेकिन फिर भी नए नियम में इसके बारे में लगभग 40 से भी ज़्यादा बार quote किया गया है, ज़्यादा बार बताया गया है.
From now you would have gathered that Zechariah is a messianic prophet.
और इस बात से आप जान गए होंगे कि जो ज़करिया है, वो तो निश्चय ही मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता था.
Zechariah's fascinating symbol, visions, plus his messages and his revelations.
और ज़करिया का जो अद्भुत दर्शन था, उसके जो सपने थे, और साथ साथ में उसका जो अद्भुत प्रकाशन था.
This all combines together to increase the importance and the interest of the book of Zechariah.
अगर हम इन सारी बातों को जोड़े तो निश्चय ही ज़करिया की किताब के अंदर जो दिलचस्प बात है वो तो और भी बढ़ती जाती है.
I'm sure you all got to open your ears and listen to this very carefully. You'll be surprised there are about 30 men in the Old Testament who were named Zechariah.
और निश्चय इस बात के बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे कि पुराने नियम में लगभग 30 ऐसे पुरुष थे जिनका नाम ज़करिया रखा गया था.
Isn't that amazing?
क्या ये अद्भुत बात नहीं है?
Before we look in detail about the messianic prophecy, we will see Who is this minor prophet Zechariah?
और मसीहा के बारे में भविष्यवाणी को देखने के पहले हम इस बात को देखेंगे कि ये छोटा भविष्यवक्ता ज़करिया कौन था.
He wrote these prophecies between 520 to 518 BC.
उसने ये भविष्यवाणी ईस्वी सन पूर्व 520 से लेकर ईस्वी सन पूर्व 518 तक लिखी थी.
He was not only a prophet, he was also a priest.
और वो केवल एक भविष्यवक्ता ही नहीं था, लेकिन वो साथ में एक याजक था.
Probably born in Babylon.
शायद हो सकता है कि उसका जन्म बेबीलोन में हुआ हो.
During the exile.
वहाँ पर जब लोग गुलामी में थे उस समय हुआ हो.
Nehemiah mentions his arrival at Jerusalem.
और नहेमिया जो है, वो तो उसके यरूशलेम में आने के बारे में लिखता है.
In Nehemiah chapter 12, verse 16.
नहेमिया अध्याय 12 वचन 16 में हम इसके बारे में देख सकते हैं.
Ezra mentions about his ministry in Ezra chapter 5 verse 1.
Ezra उसकी सेवकाई के बारे में Ezra अध्याय 5 वचन 1 में विवरण से हमें बताता है.
And also in chapter 6 and verse 14.
और साथ साथ में अध्याय 6 वचन 14 में भी वो बताता है.
I just want to remind you that the second temple was being built at Jerusalem.
और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय यरूशलेम में दूसरा जो भवन है वो बनाया जा रहा था.
During the period of Zerubbabel.
Zerubbabel के समय में ये बनाया गया.
And of course Ezra and Nehemiah.
और निश्चय ही Ezra और Nehemiah के समय में ये बनाया गया.
Prophets like Haggai and Zechariah who were born in Babylon came to Jerusalem.
भविष्यवक्ता जैसे कि Haggai और Zechariah जो कि वहाँ पर बेबीलोन में जन्मे थे, वो लोग भी यरूशलेम में आ गए.
And they joined Ezra and Nehemiah to build the temple.
और भवन बनाने के काम में वो Ezra और Nehemiah के साथ में जुड़ गए.
Now let us go to the messianic prophecy of Zechariah chapter 9 verse 9.
आइए ज़करिया अध्याय 9 वचन 9 में जो मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है उसे हम यहाँ पर देखते हैं.
This is how it reads.
ये इसी तरह से की गई है.
Rejoice greatly, O daughter of Zion.
हे सियोन, बहुत ही मगन हो ये कहता है.
Shout, O daughter of Jerusalem.
हे यरूशलेम, जय जयकार कर.
Behold, thy king cometh after thee.
क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा.
He is just and having salvation.
वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है.
Lowly and riding upon an ass.
वो दीन है और गधे पर.
And upon a colt, the foal of an ass.
वरन गधी के बच्ची पर चढ़ा हुआ आएगा.
Here we see the prophet speaks about the future king.
यहाँ पर हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता जो है वो आने वाले राजा के बारे में बताता है.
Presenting himself at Jerusalem riding on a humble donkey.
वो तो निश्चय ही वहाँ पर यरूशलेम में एक गधे पर सवार होकर आएगा.
This was foretold about 500 years later.
और ये तो लगभग 500 साल के बाद में होने वाली घटना के बारे में बताया गया था.
If you see Matthew chapter 5,
अगर आप मत्ती अध्याय 5 में देखते हैं,
and verse 17,
और वचन 17 में देखते हैं,
Jesus Christ himself during his ministry says,
और यीशु मसीह ने स्वयं अपनी सेवकाई के दौरान इस तरह से कहा था,
Think not that I come to destroy the law or the prophets.
ये न सोचना कि मैं व्यवस्था या फिर भविष्यवक्ता को दूर करने या उन्हें खत्म करने के लिए आया हूँ.
I am not come to destroy, but to fulfill.
मैं उसे नाश करने नहीं, लेकिन मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ.
All the four gospel writers have mentioned the prophecy of Zechariah.
और सभी चारों सुसमाचार के लेखकों ने जकरिया की भविष्यवाणी के बारे में लिखा है.
When we read Mark 11 verses 1 to 10.
जब हम मरकुस अध्याय 11 वचन 1 से 10 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम इस बात को देख पाते हैं.
Mark says that when he approached Jerusalem and came to Bethed.
मरकुस इस तरह से लिखता है कि जब वो बेथलहम से निकलकर बेथेड की जगह पर पहुंचा.
And Bethany at the Mount of Olives.
और बेथनी जो कि जैतून के पहाड़ के पास में, वहां पर वो पहुंचा.
Jesus sent two of his disciples.
यीशु ने अपने दो चेलों को आगे भेजा.
Saying to them.
और उनसे इस तरह से कहा.
Go to the village ahead of you.
तुम्हारे आगे जो गांव है, उस गांव में तुम जाना.
And just as you enter it, you will find a colt tied there.
और जैसे तुम उसमें प्रवेश करोगे, तुम वहां पर एक गधी के बच्चे को बंधा हुआ देखोगे.
Which no one has ever ridden.
जिस पर अब तक किसी ने सवारी नहीं की है.
Untie it.
और उसे तुम खोलना.
And bring it here.
और उसे यहाँ पर लेकर आना.
When they did as Jesus had said.
और जैसे यीशु ने उनसे कहा था, वैसे ही उन्होंने किया.
Brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it.
जब उन्होंने गधी के बच्चे को लाया और उसके ऊपर में अपने वस्त्र उन्होंने बिछा दिए.
Then Jesus sat on it.
तब यीशु उसके ऊपर सवार हुआ.
Many people spread their cloaks on the road.
और बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े निकालकर वहाँ पर सड़क पर बिछा दिए.
While others spread branches they had cut on the field.
जबकि दूसरे लोगों ने खेत में से जो डालियाँ काटी थी, उसे वहाँ पर बिछा दिया.
Jesus entered Jerusalem.
और यीशु जो है, वो यरूशलेम में प्रवेश करता है.
And those who went ahead.
और जो लोग उसके आगे आगे गए थे.
Those who followed him shouting, saying.
और जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, वो इस तरह से चिल्लाकर कह रहे थे.
Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है.
Blessed is the coming kingdom of our father David.
हमारे पिता दाऊद का जो आने वाला राज्य है, वो तो सच में बहुत ही धन्य है.
Hosanna in the highest.
Hosanna, सबसे ऊंचे में हो.
A similar narration we can find in the book of Luke.
और लूका के सुसमाचार में भी इसी तरह की कहानी को हम यहाँ पर देख सकते हैं.
Chapter 19, verse 28 to 41.
अध्याय 19 वचन 28 से लेकर वचन 41 को हम देख सकते हैं.
Also in the book of Matthew.
और साथ ही मत्ती रचित सुसमाचार में.
Chapter 21, verses 1 to 9.
और अध्याय 21 वचन 1 से 9 में हम इस बात को देख सकते हैं.
You should know that both Mark and Luke were not present at the time.
और आपको इस बात को जानना होगा कि मरकुस और लूका दोनों वहाँ पर उस समय नहीं थे.
When this incident took place.
जब ये घटना हो रही थी, तो ये वहाँ पर नहीं थे.
Of course, we all believe that though they were not present, they wrote this incident inspired by the Holy Spirit.
और निश्चय हम इस बात को जानते हैं कि हालांकि वो वहाँ पर उस जगह उपस्थित नहीं थे, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने इस बात को लिखा.
John was present there.
यूहन्ना वहाँ पर उपस्थित था.
And he writes the same incident a bit more interesting.
और वो और भी थोड़ा दिलचस्पी से इसी घटना को लिखता है.
He says in John chapter 12.
यूहन्ना अध्याय 12 में उस तरह से कहता है.
Jesus 6 days before the Passover came to Bethany.
यीशु फसह के 6 दिन पहले वहाँ पर बेथनी में पहुँचता है. वो तो बेथनी में आ जाता है.
The Passover feast is very important for a Jew, and therefore Jesus had to attend the Passover.
और यहूदी लोगों के लिए फसह का जो पर्व है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और इसलिए यीशु को वहाँ पर फसह के दिन में उस जगह पर उपस्थित रहना था.
Whenever Jesus comes to Jerusalem, he always visits Bethany.
और जब भी यीशु यरूशलेम में आता था, वो हमेशा बेथनी में जाता था.
I'm sure you all would have guessed by now whose house it is.
और निश्चय मैं जानती हूँ कि आपने अनुमान लगाया होगा कि वहाँ पर किसका घर था.
The house of Lazarus and his sisters, Martha and Mary.
वहाँ पर लाजर और उसकी बहनें मार्था और मरियम का घर था. यीशु उनके घर जाता था.
The distance between Jerusalem and Bethany is just less than 2 miles.
और यरूशलेम और बेथनी के बीच की जो दूरी थी, वो तो 2 मील से भी कम की दूरी थी.
As recorded in John chapter 11 verse 18.
और यूहन्ना अध्याय 11 वचन 18 में इसके बारे में लिखा गया है.
So when he came to Bethany,
यानी जब वो वहाँ पर बेथनी में आता है,
John chapter 12 verse 9 says,
यूहन्ना अध्याय 12 वचन 9 इस तरह से कहता है,
Much people of the Jews therefore knew that he was there.
बहुत से यहूदी लोग इस बात को जानते थे कि वो तो वहाँ पर है.
And they came not for Jesus' sake only.
और वो वहाँ पर केवल यीशु के कारण ही नहीं आए थे.
But they may see Lazarus also.
लेकिन इसलिए आए थे कि वो लाजर को भी देख पाएं.
Whom he had raised from the dead.
जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था.
Huge crowds were assembled here and many believed on the Lord Jesus Christ.
यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जमा थी और उनमें से बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास किया.
Seeing these huge crowds of people who had great faith on Jesus Christ.
इस बड़ी भीड़ को जब उसने देखा जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर महान विश्वास रखा था,
The high priest plotted to put him to death.
तो महायाजक ने इस तरह से योजना बनाई कि किस तरह से उसे मार दें.
And you may ask the reason why.
और शायद आप पूछे कि इसका कारण क्या है?
They wanted to kill him because of his growing popularity.
वो जो विख्यात होते चले जा रहा था, इसी के कारण महायाजक और दूसरे लोग जो है उसे मार देना चाहते थे.
If we read the four gospels,
अगर हम चारों सुसमाचार पढ़ते हैं,
We understand that Jesus Christ used to travel to different towns and villages to do the ministry.
हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह सेवकाई करने के लिए बहुत से अलग-अलग नगरों में और गांवों में जाता था.
All the while he used to walk to these different places.
और हर जगह वो केवल पैदल चलकर ही जाया करता था.
Nowhere can we find it mentioned that he rode a donkey.
और कहीं पर भी हम ये नहीं देखते हैं कि वो गधे पर सवार होकर गया.
Or even a horse to reach his destination.
या फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसने कभी घोड़े से यात्रा की हो.
He always walked.
वो हमेशा पैदल चलता था.
So this time also he is going to walk from Jericho to Bethany.
और इस समय भी वो यरीहो से बेतनी तक पैदल चलने वाला था.
And to Jerusalem to attend the Passover feast.
और यरूशलेम में फसह के पर्व में उपस्थित रहने के लिए भी वो पैदल ही जाने वाला था.
Jesus being young and able to walk also chose young people to be his disciple.
और यीशु जो कि जवान था और वो पैदल चल सकता था, उसने अपने चेले होने के लिए उस समय जवान लोगों को ही चुना था. उसके चेले जवान ही थे.
As they were young, they were also energetic to walk along with him.
और जैसे कि चेले जवान थे तो उनमें इतनी शक्ति थी कि वो भी उसके साथ में चल सके.
The main purpose of Jesus Christ's walk on this earth was to fulfill the prophecies.
और इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के चलने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो तो भविष्यवाणियों को पूरा करते चले जाएं.
So when he is going from Bethany to Jerusalem, he remembers the prophecy given by Zechariah.
और जब वो बेथनी से यरूशलेम की ओर जाता है, तो उसने वहाँ पर ज़करिया की जो भविष्यवाणी थी, उसे याद किया.
Rejoice greatly, O daughter of Zion.
हे सियोन की बेटियों, आनंदित हो जाओ.
Shout, O daughter of Jerusalem.
और हे यरूशलेम की बेटियों, तुम जय जयकार करो.
Behold, thy king cometh unto thee.
देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास में आएगा.
He is just and having salvation.
वो तो निश्चय दीन है और वो उद्धार लेकर आया है.
Lowly and riding upon an ass.
वो तो दीन है और गधी पर सवार होकर आता है.
And upon a colt, the foal of an ass.
वो तो गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है.
So he calls two of his disciples.
और इस कारण वो अपने दो चेलों को बुलाता है.
And gave them specific instructions.
और वो उन्हें वहाँ पर खास निर्देश देता है, उन्हें बताता है.
To get the donkey on which nobody has ever sat.
कि ऐसे गधे को लेकर आए जिस पर अब तक किसी ने सवारी नहीं की हो.
And then he seated himself on the donkey.
और फिर वो स्वयं उस गधे पर बैठ जाता है.
And entered Jerusalem.
और यरूशलेम में प्रवेश करता है.
Of course, you all know the donkey represented royalty and peace.
और निश्चय आप जानते हैं कि जो गधा है वो राजघराने को और शांति को दर्शाता है.
In those days, kings had their own donkeys to ride on.
और उन दिनों में राजा के पास अपने गधे हुआ करते थे जिस पर वो सवारी किया करते थे.
Horses were used for wars only.
और घोड़ों का उपयोग तो केवल युद्ध के लिए किया जाता था.
At the time of King Solomon's anointment,
और जब राजा सुलेमान का अभिषेक किया गया उस समय,
as a king,
एक राजा के रूप में जब वो नियुक्त
in
हुआ,
1 Kings chapter 1 verse 32 and 33,
पहला राजा अध्याय 1 वचन 32 और वचन 33 में हम देख सकते हैं,
we read that King David,
हम इस तरह से पढ़ते हैं कि राजा दाऊद ने
instructed,
इस तरह से उन्हें निर्देश दिए थे,
Zadok the priest,
वहाँ जो याजक थे उन्हें निर्देश दिया था,
and Nathan the prophet,
और नादन भविष्यवक्ता को निर्देश दिया,
and Benaniah the son of Jehoda,
और जिहुदा का पुत्र बेनन्या को उसने इस तरह से आज्ञा दी,
to take his royal donkey,
कि वो अपने राजघराने के जो गधे हैं उन्हें ले,
this was solely used by King David,
जो कि केवल राजा दाऊद ही उपयोग किया करता था.
Then he asked them to make Solomon sit on his own mule.
और फिर उसने इस तरह से कहा कि सुलेमान अपने ही खच्चर पर सवार हो जाए.
And take it in procession to Gihon.
और फिर गिहोन तक इस तरह से जुलूस में वो आगे बढ़ता चला जाए.
And then to anoint him as the king.
और फिर उसके बाद में उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया गया.
Though riding a donkey represented royalty,
और हालांकि गधे पर सवार होना ये तो राजघराने को दर्शाया करता था,
Here Jesus was to fulfill the prophecy, rode on a donkey through the streets of Jerusalem.
और यहाँ पर यीशु मसीह को इस भविष्यवाणी को पूरी करना था कि वो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है.
Though riding a donkey represents royalty, yet Jesus to fulfill the prophecy rode on a donkey.
और निश्चय ही गधे पर सवार होना ये तो राजघराने की बात हुआ करती थी, और यहाँ पर यीशु गधे पर सवार होता है.
Through the streets of Jerusalem.
यरूशलेम की सड़कों पर वो जाता है.
The Bible says that they spread their garments and broke palm leaves and also spread the branches.
और बाइबल ये भी कहती है कि उन्होंने अपने अपने वस्त्रों को वहाँ पर सड़कों पर बिछा दिए, और साथ साथ में उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और खजूर की डालियों को भी वहाँ पर बिछा दिया.
We know that in the olden days, whenever the king went in procession.
हम इस बात को जानते हैं कि पुराने जमाने में जब भी राजा का कोई जुलूस हुआ करता था,
Out of respect, people put their cloth.
और आदर के कारण लोग जो हैं वहाँ पर अपने वस्त्र उसके सामने बिछा दिया करती थी.
So everyone took his garment and spread it down, and later they took it back.
सभी अपने वस्त्र को वहाँ पर निकाल कर सड़क पर बिछा दिया करते थे, और उसके बाद में वो अपने अपने वस्त्रों को उठा भी लिया करते थे.
In giving reverence to the king.
राजा को आदर देने के लिए वो ऐसा किया करते थे.
Here for Jesus Christ, the people wanted to give respect and of course holy reverence.
और निश्चय यहाँ पर यीशु मसीह के लिए लोग यहाँ पर उसका आदर करना चाहते थे, और साथ साथ में पवित्र रूप में उसका सम्मान करना चाहते थे.
So what did they do? They put their garments when he rode forward on the donkey.
तो फिर उन्होंने क्या किया? जबकि वो गधे पर सवार होकर जा रहा था, उन्होंने अपने वस्त्र सामने बिछा दिए.
The fulfillment of the prophecy by Zechariah in chapter 9, verse 9. was known only by two people.
ज़करिया अध्याय 9 वचन 9 में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी उसकी परिपूर्ति के बारे में केवल दो लोग ही जाना करते थे.
One is Jesus Christ and the other was prophet Zechariah who wrote this prophecy.
एक तो यीशु मसीह था, और दूसरा व्यक्ति जो था वो तो स्वयं ज़करिया था जिसने इस भविष्यवाणी को लिखा था.
When prophet Zechariah wrote this prophecy,
और जब ज़करिया भविष्यवक्ता ने इस भविष्यवाणी को लिखा,
The rebuilding of the second temple was taking place.
और उस समय दूसरे भवन का जो निर्माण था वो काम चल रहा था.
But when it was fulfilled 500 years later,
लेकिन जब 500 साल के बाद में ये भविष्यवाणी पूरी हुई, उस समय तो
it was totally a new and a different scenario.
ये तो पूरी तरह से बिल्कुल नया और बिल्कुल अलग ही चित्र था.
Now let us read John chapter 12, the most famous chapter in John. And verse 16.
आइए यहाँ पर हम यूहन्ना अध्याय 12 जो कि बहुत ही विख्यात ऐसा अध्याय है, इसमें से वचन 16 को हम यहाँ पर पढ़ते हैं.
These things understood not his disciples.
और ये जो बातें हैं उसके चेले वहाँ पर नहीं समझ पा रहे थे.
At the first they were astounded.
सबसे पहले तो वो इस बात को सुनकर चकित हो गए.
When Jesus was glorified, they remembered that these things were written of him.
और जब यीशु महिमा को पाया तब उन्होंने इस बात को जाना कि उसके बारे में इन सारी बातों के बारे में पहले से लिखा हुआ था.
And they had done these things unto him.
और निश्चय उन्होंने ये सब कुछ उसी के लिए किया है.
Then John writes, a huge crowd went along with him.
और फिर यूहन्ना इस तरह से लिखता है कि एक बड़ी भीड़ वहां पर उसके साथ में हो ली.
Let us continue reading in chapter 12, verse 19. John writes.
और आइए यहाँ पर अध्याय 12 वचन 19 में हम आगे पढ़ते चले जाते हैं. यूहन्ना लिखता है.
The Pharisees therefore said among themselves.
और इसलिए फरीसियों ने आपस में इस तरह से कहा.
perceive ye how he prevail nothing.
देखो कि किसी भी बात से इस पर हम हावी नहीं हो सकते हैं.
The world is gone mad after him.
संसार जो है वो तो इसके पीछे पागल होते जा रहा है.
The whole city of Jerusalem was rejoicing.
और पूरा यरूशलेम का जो नगर था उसके लिए आनंद मना रहा था.
And it was a very happy occasion.
और निश्चय ये तो बहुत ही खुशी का ऐसा मौका भी था.
In the midst of the celebration, two important events were taking place.
वहाँ पर जो उत्सव मनाया जा रहा था, उस समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही थी.
The first incident is that the Sanhedrin council members finally decided that Jesus Christ should be crucified.
और वहाँ पर Sanhedrin council के जो लोग थे, उन सभी लोगों ने आखिर में इस तरह से निर्णय लिया कि यीशु मसीह जो है, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए.
They concluded.
उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला.
If they allowed him to continue.
अगर वो इस तरह से उसे आगे काम करते देते जाएंगे.
Huge crowds would follow him.
तो बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेगी.
And he will definitely build his kingdom.
और निश्चय ही वो अपने राज्य को बना लेगा.
The second is that Jesus Christ himself knew that this was his last journey into Jerusalem.
और दूसरी बात ये है कि स्वयं यीशु मसीह इस बात को जानता था कि यरूशलेम में ये तो उसकी आखिरी यात्रा है.
And he was riding on a donkey.
और वो तो वहाँ पर गधे पर सवार होकर आया था.
Not to become king, but to sacrifice his life for all of us on the cross of Calvary.
राजा होने के लिए नहीं, लेकिन हम सभी के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण का बलिदान देने के लिए वो वहाँ पर उस जगह आया था.
Though Zechariah wrote this prophecy about the entry of Jesus Christ into Jerusalem.
हालांकि यरूशलेम में यीशु मसीह के प्रवेश के बारे में ज़करिया इस भविष्यवाणी को लिखता है.
On a donkey 500 years before all could happen.
कि वो गधे पर सवार होकर आएगा और ये सब होने के 500 साल पहले वो लिखता है.
And it was fulfilled in 32 AD.
और निश्चय ही ईसवी सन 32 में ये जो भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी पूरी हो गई.
Jesus Christ himself said in Matthew chapter 5 verse 17.
स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 5 वचन 17 में इसके बारे में कहा है.
Think not that I come to destroy the law or the prophets.
ये न सोचना कि मैं व्यवस्था को खत्म करने के लिए आया या भविष्यवक्ता की बातों को खत्म करने के लिए आया हूँ.
I am not come to destroy, but to fulfill.
मैं उन्हें नाश करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तो उसे पूरा करने के लिए आया हूँ.
In the next episode, we will continue to talk in detail about the other prophecies written by Prophet Zechariah.
और अगले एपिसोड में ज़करिया भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई दूसरी भविष्यवाणियों के बारे में हम विवरण से देखते चले जाएंगे.
I'm sure we all will be seated and we'll meet once again next week, same time, same place. May God bless each and every one of you. Listening to this program so eagerly and noting the points.
और मैं निश्चय ही जानती हूँ कि अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन आप निश्चय ही अपने नोट्स लेने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठकर इस प्रोग्राम की राह देखेंगे.
May God bless each and every one of you and your families.
परमेश्वर आप में से हर एक को और आपके परिवार को आशीष दे.
על יום שמאיר, הללויה, על מה שהיה ומה שעוד לא היה, הללויה.